आयत नंबर 57 से, ठीक है। पीछे बात हुई जहन्नमियों की, अभी तक जो बात हुई इसका अगर थोड़ा सा खुलासा कर ले, तीन किस्म के गिरोह हैं, साबिकून अल अव्वलून, असहाबुल यमीन और असहाबुल शिमाल। अल्लाह सुबहाना तआला ने तीनों किस्म के गिरोहों का इस सूरत के आगाज़ में तस्करा करके हम सबको एक टारगेट दिया कि तुमने असहाबुल शिमाल में से नहीं होना, असहाबुल यमीन में आगे तो बच गए लेकिन तुम्हारा गोल साबिकून अल अव्वलून होना चाहिए। अब यहाँ से आगे 57 से कुछ सवालात हैं शऊर को बेदार करने वाले, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं हैमरिंग, हथौड़े बरसाना, सोल सर्चिंग क्वेश्चन। किस तरीके से शऊर को बेदार किया जा रहा है? अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं नहनु खलकनाकुम, बेशक हमने पैदा किया तुमको, फलौला तुसद्दिकून, फिर क्यों तस्दीक नहीं करते? सवाल से ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसा है कि जो अल्लाह को नहीं मान रहा। अब देखिए कि यहाँ से शुरू करके आयत 74 तक जो भी दलाइल पेश किए जाएंगे, इसमें बयक वक्त आखरत और तौहीद की बात है, यानी अल्लाह की ज़रूरत को महसूस करो, अल्लाह ने तुमको पैदा किया। मक्का वाले नबी सल्लम की इन दो तालीमी बातों पे एतराज़ करते थे, इसीलिए यहाँ आखरत के सबूत में और अल्लाह की तौहीद की सदाकत में बात की जा रही है। यहाँ ये जुमला फिर क्यों तस्दीक नहीं करते, इससे क्या मुराद है? बहुत बड़ा सवाल है इस बात का, क्या तुम अपने खालिक खुद हो? तस्दीक किस बात की मतलूब है? कि हम ही तुम्हारे रब हैं और माबूद हैं और हम तुम्हें दोबारा भी पैदा कर सकते हैं। और हकीकत भी यही है कि एक इंसान ना खुद से दुनिया में आ सकता है और ना जा सकता है, तो ना आने पे इख्तियार ना जाने पे इख्तियार, तो पीछे रह क्या गया चंद साल की ज़िंदगी। इसमें जो शख्स अल्लाह ताला की ज़रूरत को महसूस नहीं करता, वो हकीकत में बहुत ही महरूम इंसान है। अगर आप देखिए कि एक बच्चा दुनिया में जब आता है तो वो अपने माँ बाप का बहुत मुख्ताज होता है, करवट भी नहीं पलट सकता, लेकिन वक्त के साथ साथ वो मुख्ताजी कम हो जाती है और एक वक्त आता है कि बल्कि माँ बाप हमारे मुख्ताज हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह के साथ एक इंसान की मुख्ताजगी जिस दिन एक बच्चा दुनिया में आता है उससे लेकर दुनिया से जाने तक ख़त्म नहीं होती। जिस तरह दुनिया में आते वक्त बच्चे को स्ट्रगल करनी पड़ती है ना, माँ के साथ बच्चा भी मेहनत कर रहा होता है, इसी तरह जान कनी के वक्त भी बंदे को अल्लाह की ज़रूरत होती है। और अल्लाह ताला ना चाहे तो कभी जान भी पूरी ना निकले, बड़ी मुश्किल होगी वो घड़ी जब एक इंसान का एक पाँव इस ज़मीन पर और एक आगे होगा। तो अल्लाह सुबहाना तला इंसान की बेबसी का ख्याल दिलवाते हैं, अफराई तुम मा तुम नून, क्या बस तुमने कभी गौर किया? ये जो लफ्ज़ ना अफराई तुम, लफ्ज़ी तर्जमा के क्या बस देखा तुमने, लेकिन यहाँ देखने से मुराद टू लुक नहीं है, टू सी नहीं है, बल्कि टू पॉन्डर, सोचो, गौर करो, टू थिंक, गौर करो। और ये अंदाज होता है उस वक़्त जब किसी को आम बात जो कि दिन में कई बार हो रही है लेकिन लोग उस पर तवज्जो ना करते दिखें, तो उसका एहसास दिलाया जाता है। फरमाया क्या कभी तुमने गौर किया, माँ तुम नून, जो नुतफ़ा तुम डालते हो मनी से, रहम मादर में मनी का टपकाना तुम नून, मन से, यानी वो पानी का एक कतरा टपकाकर तुम तो अलग हो गए, तुम्हारे लिए तो अब उसके बाद के मरहले बिल्कुल छुपे हुए हैं, लेकिन वो कौन सी हस्ती है जो उस पानी के एक कतरे को इतनी खूबसूरत बोलती सुनती रोती धोती तस्वीर में बदल देता है, जिसको तुम बच्चा कहते हो? तुम कभी गौर तो करो, अगर तुम्हारे इख्तियार में होता बच्चे की तख्लीक के वो सारे मराहल जो माँ के पेट में होते हैं, तो कैसे पैदा होते बच्चे टेढ़े मेढ़े, किसी का सर लंबा, किसी की एक आँख छोटी। अंतुम तख्लुकून ना हो, क्या तुम तख्लीक करते हो इनकी, क्या इसको तुम बनाने वाले हो? अम नहनुल खालिकून, या हम हैं खालिक, यानी उसे एक नुतफ़े से बच्चा तुम बनाते हो या इसके बनाने वाले हम हैं। मुख्तसर सा फिक्र है लेकिन बड़ा अहम सवाल है इंसान के सामने। अगर इंसान दुनिया में मौजूद सारी चीज़ों को एक तरफ कर दे और सिर्फ इस एक बात पे गौर करें ना कि वो खुद किस तरह पैदा हुआ और आज बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं, तो ना उसको कुरान की तालीम पे शक रहेगा, ना तौहीद में कोई शक होगा, और मरने के बाद दोबारा जी उठने पे तो वो शक कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये इतना नामुमकिन प्रोसेस है जो हम हर रोज़ देखते हैं। इम्पॉसिबल को अल्लाह ने पॉसिबल करके दिखाया, चूंकि हमारे आंखों के सामने रोज़ हो रहा है, आए दिन हम सुनते हैं उसके घर बच्चा हुआ, उधर बेटा हुआ, उसकी बेटी, उसको देखने जाना है, उसको देखना है, मुबारक देनी है, बच्चे को क्या दे। कभी एक किसी बच्चे की पैदाइश का सुनकर ये भी तो गौर करो क्या कि तुमने इसको पैदा किया या हमने। आ अंतुम तखलुकून हो अम नखनुल खालिकून। अब देखिए कि माँ बाप जितनी मर्जी ख्वाहिश रखें, बच्चा तभी होता है जब अल्लाह चाहता है, और माँ बाप जितनी मर्जी प्रिकॉशंस ले लें, बच्चा हो जाता है जब अल्लाह चाहता है। कई लोग कहते हैं हमने तो प्लान ही नहीं किया, तो क्या ख्याल है जो बाकी बच्चे आपके वो आपकी प्लानिंग से हैं? नहीं, नख्नु खालिकून। इस जुमले को याद रखिए, हमें अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी यही चीज़ें समझनी है कि हम बच्चे को पैदा कर ही नहीं सकते, और आप देखिए जिस माँ के पेट में ये सब कुछ हो रहा होता है उसको भी नहीं पता होता। आज चूँकि साइंस ने तरक्की की, अल्ट्रासाउंड और बच्चे की हरकतें माँ के पेट की नोट कर ली जाती, इसके बावजूद आपने जेंडर ले ली, मिसाल है कि बेटा होगा बेटी, ले लिया, उसका वजन भी ले लेते हैं, पेट में बच्चे के जिस्म में क्या कमी है, पोटाशियम, कैल्शियम, कार्बन, जो चीज़ें सब वो भी देखते हैं, लेकिन क्या माँ के पेट में बच्चे की जो शक्ल बनी है वो माँ को पता? गोरा के काला, नाक पतली के मोटी, चलें हो सकता है आने वाले चंद सालों में ये भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, खुशकिस्मत के बदबخت, पैदा होने के बाद कितना जिएगा, दुनिया में आने के बाद उसको कितनी बीमारियां लगेंगी, किसी को नहीं पता। और बाज़ दफ़ा तो डॉक्टर पूरे 9 महीने तसलियाँ देते रहते हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, और बच्चा पैदा होता है तो वो बीमार होता है। बाज़ दफ़ा कहते हैं बीमार है बीमार है, अबॉर्ट करा दो अबॉर्ट करा दो, लेकिन पैदा होता है तो ठीक है। ये दोनों मिसालें बिल्कुल हमारे क्लोज सर्कट में किसी के साथ हुई, और वो कहते थे शुक्र है डॉक्टरों की बात पर अबॉर्शन नहीं करा दिया, और दूसरी तरफ डॉक्टरों पर क्लेम था कि जब बच्चा अंदर ऐसा बीमार था तो उसको इतना आर्टिफिशियली क्यों इतना इंड्यूस किया। सोचने की बात है, इंसान एक ख़ास हद तक इख्तियार रखता है, उसके बाद फिर हम बेख्तियार हो जाते हैं। इसीलिए आप देखिए कि आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं नख्नु कद्दरना बैनकुमुल मौत, और हमने तुम्हारे बीच में मौत को भी मुकर्रर कर दिया, तुम्हारे दरमियान मौत को तकसीम कर दिया, वमा नख्नु बिमसबूकीन, और हम इससे भी आजिज़ नहीं, हम पीछे रहने वाले ही नहीं हैं। किस चीज़ से आजिज़ नहीं? मसबूक कौन है जो पीछे रह जाए? साबिक कहते हैं दौड़ में भाग में आगे जाने वाला, फाइल का वज़न, मसबूक मफूल का वज़न, यानी दो भाग रहे थे, एक पीछे रह गया एक आगे निकल गया, आगे निकलने वाला साबिक, तो जो हार गया जो पीछे रह गया वो मसबूक। तो यहाँ लफ्जी माना कि हम हारने वाले नहीं हैं, हम मजबूर नहीं हैं, किस बात से? अला नुबद्दिल अमसालकुम, कि तुम्हारी शक्लें बदल दें, वनुंशियकुम फी मा ला तालमून, या तुम्हें ऐसी शक्ल में पैदा कर दें जिसको तुम जानते ही नहीं हो। बच्चा पैदा हो तो चेहरे पे जानवरों की तरह बाल हो, बंदर जैसी शक्ल हो, हाथों पे मछली की तरह के चाने हो, एक आंख आगे हो एक पीछे हो, किसको पता बच्चा पैदा होने के बाद कैसा होगा। तो मान जाओ वलकद अलिम तुमुन्नशतल ऊला, अपनी पहली पैदाइश को तो तुम जानते ही हो, तो फलौला तज़क्करून, फिर क्यों सबक नहीं लेते? आप देखिए ये चार पांच आयतें मुख्तलिफ एंगल से तख्लीक और बच्चे की पैदाइश से मुतल्लिक ही हैं। चंद दिन पहले किसी ने एक वीडियो दिखाई, दो बच्चियां हैं, मेरा ख्याल है कमो बेश वो 3 साल, यानी चलती भी बच्चियां 2.5-3 साल से ऊपर ही की होंगी, अच्छी सेहतमंद बच्चियां, ऊपर से दोनों के सर जुड़े हुए हैं, पीछे से बैक से गुद्दी जुड़ी हुई है, और किस तरह माँ बाप उसको टैकल करते हैं, अल्लाह की बना। दोनों चल सकती हैं, पर मसला ये कि अगर एक सीधी चलेगी तो दूसरी सीधी खड़ी हो जाएगी, सर पीछे एक खम के साथ जुड़ा हुआ है, कौन करता है? अब ख़तरा ये है कि अगर उसका ऑपरेट किया, दोनों कंप्लीट बची हैं, लेकिन जब ऑपरेट करेंगे तो डर यह है कि किसी एक का फिर ब्रेन कटेगा, या अंदर कुछ ना कुछ टिश्यूज़ तो कॉमन होंगे ना, ये कौन करता है? और एक आंख वाला बच्चा भी आपने देखा होगा। आपने बच्चे की आंखों की जगह पे सिर्फ सुराख बने हुए भी देखे होंगे। क्या माँ को पता है कि ये सब कुछ कैसे है? और जीना तो जीना, मरना भी हमने बताया है। पैदा होते ही एक सांस लेके जाना है, या 100 साल का होके मरना है, या 50 साल का। यानी हम कितने मजबूर हैं। मैं सोचती हूँ कभी कि अगर इंसान सिर्फ अपनी बेबसी पे गौर करे तो वाकई वो तो अपना बच्चा भी पैदा नहीं कर सकता। शरीर होगा, शरारती होगा बच्चा, सीधा होगा, भोला होगा, ज़्यादा बोलेगा, कम होगा। कभी सोचो ये कौन करता है? किस हस्ती के लिए तुम इतने मजबूर हो कि वो तुम्हें जैसा कर दे चुप करके बैठ जाते हो? गोरा कर दे, काला कर दे, होंठ मोटे कर दे, आंखें छोटी कर दे, बड़ी कर दे, फिर उस बच्चे का मेलान क्या है? शर की तरफ मेलान है, खैर की तरफ उसका मेलान है। वो माँ बाप के आगे आजिज़ है, शुक्रगुजार है, नाशुक्रा है, हम्बल है, क्या करता है? और वो डॉक्टर जो सिर्फ उस बच्चे को डिलीवर कराने में मदद करता है, उसको लाखों रुपया दे देते हो। जो नुतफे को हड्डियों में, कानों में, मसल्स में, लिवर में, और इसी तरह जिस्म के इतने अज़ा में ढालते, उसको क्या देते हो? आप सब जानते हैं हर मुल्क में बच्चे के पैदा होने के खर्चे हैं ना। कुछ मुल्कों में हुकूमत देती है, कुछ में आप खुद देते हैं। एक बच्चा पैदा करना भी आज के दौर में आसान काम नहीं, लोग समझ रहे। लाखों का खर्चा हो गया, ऑपरेट करेंगे तो इतने का, नेचुरल होगा तो इतने का। बनी हुई चीज़ को आप सिर्फ वहाँ से निकाल कर, जैसे डिलीवरी के खर्चे हैं, आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो डिलीवरी चार्जेस थोड़े ही होते हैं ना, चीज़ महंगी होती है। बच्चे को दुनिया में डिलीवर करने पे, और उसमें भी डॉक्टर्स का एक खास हाथ है, जब तक अल्लाह का हुक्म ना, वक्त ना आए, बच्चा डिलीवर ही नहीं होता। पेट फाड़ के तो वो किसी भी वक्त कर दे। सिर्फ डिलीवर करने के इतने पैसे हैं कि लोग कहते हैं अभी तो मैं इसकी पैदाइश के किस्ते दे रहा हूँ, अब आगे उसकी मैं बाकी चीज़ों की कैसे दूँ। कहते हैं आज पैदा होता बच्चा कर्ज़ों में होता है। कई जगहों में बच्चे की पैदाइश के वक्त जो खर्च होता है उस पर लोन लिया जाता है, उस पर सूद देते लेते हैं, फिर बच्चे की प्रेम खरीदते हैं, वो सूद पे खरीदते हैं, फिर उसका झूला खरीदते हैं। वो पैदा होता ही वो बच्चा कर्ज़ों में। अरमान और चाह और शौक ने लोगों को इतना मजबूर कर दिया। लेकिन सोचो अगर एक एक उसके बनाने के तुम रब को कुछ देते तो क्या देते? 360 जोड़ हैं जिस्म में, ये जॉइंट आप देखिए कितने आराम से, आप देखिए उंगलियां अपनी हिलाएं कैसे जोड़ रहे हैं, और यहाँ भी हिलती है, यहाँ भी हिलती, हर एंगल में है। दुनिया का कोई ऐसा वॉल जो आप एक पोजीशन पे हेड कर लें, जैसे ये माइक है, हम इसको लेते हैं सारा वक्त इसको सेटिंग में ही लगा देते हैं, कभी सेट हो जाता है, कभी नहीं होता। कभी गाड़ी का स्टेयरिंग देखिए, व्हील्स देखिए, अलाइनमेंट्स चेक करते हैं, व्हील्स में कभी हवाएं डालते हैं, कभी कम करते हैं, कभी बैटरी का पानी चेक करो, कभी मोबिल ऑयल चेक करो, कभी लुब्रिकेशन नहीं है। एक गाड़ी जो आप इतने हज़ारों की लेते हैं, वो ही आपको 4-6 साल के बाद तंग करना शुरू होती है। कभी आपने अपने बच्चे के जोड़ों को भी जाके तेल दिया अंदर से? कभी इंसान सोचे इतनी बड़ी हस्ती को छोड़कर फिर इंसान? और सबसे बड़ी बात देखिए, सब कुछ भी कर ले, अपनी मर्जी से बेटे को बेटी में नहीं बदल सकते, फिर भी अल्लाह के हुक्म के मुंतजिर हैं, देखें बेटा होता है कि बेटी। 10 बेटे हैं, 11वां फिर बेटा ही हो गया, नहीं मिलेगी बेटी तो नहीं मिलनी, और 10 बेटियों के बाद 11वीं भी बेटी ही है आपके नसीब में। और सिंपल सा एक फिनोमिनन है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो क्रोमोसोम मिलते हैं। कौन जहन है, गबी है, कैसा है, कैसा होगा, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में। तो कहा क्या जा रहा है, अल्लाह की ज़रूरत को महसूस करो, ये है तौहीद। हम कहते हैं तौहीद शायद ला इलाहा इल्लल्लाह 1 लाख दफ़ा पढ़ने का नाम है, और तौहीद शायद कुछ बुतों को तोड़ने का नाम है। नहीं, तौहीद अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के वजूद को तस्लीम करने का नाम है। अल्लाह की ज़रूरत महसूस करने लगो। खुद से पूछिए कैसी मवाहिद हूँ। आज तो लोगों ने इसको फिक से उलझा कर फिरकेबाजी कर दी ना, अकीदा कुछ और चीज़ है, फिक कोई और चीज़ है। और बाद लोग फिक की इख्तलाफात को कहते हैं नहीं जी हमारा अकीदा नहीं उनसे मिलता, हमारा मसलक नहीं जी उनसे मिलता। बेवकूफ़ी की बातें हैं, पता भी कुछ नहीं आपको, सिर्फ सुनी हुई बातों पे आप अलग हो जाते हैं और तासुब फैलाते हैं एक दूसरे फिरके के बारे में। तौहीद क्या है कि आपको अल्लाह की ज़रूरत महसूस हो रही है, आप उससे बेनियाज नहीं रह सकते। और ला इलाहा इल्लल्लाह 6 चीज़ें हैं उसमें, कि अल्लाह जैसा कोई है ही नहीं है। और आप देखिए एक ऐसा जरसूमा होता है, खुली आंख से नहीं दिखता, उससे आपका मेरा आगाज़ हुआ, किसी को पता ही नहीं होता। अगर वो कतरा खुली आंख से ना दिखे तो कोई समझ ही नहीं सकता वो है। और माँ के पेट से जो ओवम में एग निकलता है, खुली आंख आज तक उसको नहीं देख सकी। बड़ी बड़ी माइक्रोस्कोप्स में दिखाते हैं और वो कहाँ जाके मिलता है। और अगर आपने वो वीडियोस देखी हो, ये माँ तुम नून में, कि बाप की तरफ से एक वक्त में मिलियंस स्पर्म्स जाते हैं और उनमें से सिर्फ एक स्पर्म माँ के पेट के अंदर ओवा से मिलता है और फिर बच्चे का जायगोट बनता है। किसका फैसला था इन मिलियंस जरसूमों में से एक को जोड़ने का? और कभी दो जुड़ जाते हैं तो ट्विंस होते हैं, तीन जुड़ जाएं तो तीन हो सकते हैं। ये कौन करता है? क्या ये किसी इंसान के बस की बात है? तो फिर सोचो कि जो दुनिया में लाते वक्त तुम्हें इतना बेबस कर देता है, बाद में क्या तुम उसके बगैर जी सकते हो? और ये जो मौत की बातें हैं, अल्लाह की बना। मुझे चंद दिन पहले आपको जिक्र किया, एक ओल्ड होम में जाने का मौका मिला। यकीन करें, मैं सोचूं ये क्यों जिंदा है। हड्डियों की मुठियां करहते हुए हाय हाय की आवाजें आती हैं। जिस डोर के अंदर आपकी नजर पड़ जाए, इबरत से आप हाथ हटा ले, ऐसे लगता है ढांचों के ऊपर चमड़ी चढ़ी हुई है। सिर्फ वाकई लगता है कि ये मौत का इंतजार है, क्योंकि नहनु कद्दरना बैनहु, फैसला नहीं हुआ अभी उनकी मौत का, अभी उनके आने का वक्त नहीं है। अल्लाह के पास डॉक्टर्स हैं, हकीम हैं, तबीब हैं, और जिसको लेना है अल्लाह ताला एक सेकंड में ले जाता है। बात करता करता बंदा मर जाता है। किसी ने अभी ये बताया, ये यूके में थी तो किसी के साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है कि शायद लंदन से एक बच्चा मैनचेस्टर जा रहा था और कहते हैं कि हाफिज था, पूरा महीना उसने रमज़ान में तरावियां पढ़ाई, यानी बहुत नेक अच्छा बच्चा था, निकाह हुआ हुआ था, रमज़ान के बाद रुखसती की डेट थी और शायद लंदन से मैनचेस्टर जा रहा था। रास्ते में एकदम कोई गाड़ी सामने आई है तो इसको अपनी आंखों में ऐसे कुछ महसूस हुआ है जैसे इसको नज़र नहीं आ रहा, तो वो लाइट का असर या झटके का असर समझ के साइड पे हो गया। इस शॉक की वजह से उसको डॉक्टर पे ले गए और डॉक्टर पे गए तो पता चला उसका तो ब्रेन ट्यूमर है, और विद इन फ्यू डेज, ईद के शायद एक हफ्ते के बाद उसकी डेथ हो गई। और वो औरतें जो मुझे ये कहानियाँ सुना रही थी, वो कह रही थी कि रमज़ान में वो ये कर रहा था हमारे सामने, वो ये कर रहा था, वो इस वक्त आता था, वो जाता था, एक्टिव बच्चा था, और अभी रुखसती होने वाली थी और वो दुनिया से रुख्सत हो गया। क्या उसको पता था मिर्जा जी होने वाला? तो क्या मुझे पता है इस वक्त मेरे अंदर कितनी बीमारियां हैं? क्या मुझे पता है कि मेरे दिन कितने गिने जा चुके हैं? वल्लाही अगर ये पता लग जाए, हमारी तरजीहात बदल जाए। हम सब झगड़े लड़ाइयाँ और अपने दिफा भूल कर सिर्फ और सिर्फ एक गम पर पड़ जाएं कि मेरी आखिरत कैसी होगी। ये गम लग जाए, बच्चों के गम छोटे, तलाकें हो रही छोटे, घर नहीं बस रहे छोटे, रिश्ते नहीं हो रहे छोटे, बच्चा हुआ कि नहीं हुआ छोटे, मियाँ की जॉब चली गई छोटे, मियाँ की जॉब मिल गई छोटे, हर खुशी और हर गम बिल्कुल बेमानी हो जाता है जब बंदे को दुनिया से अपने जाने का वक्त याद आ जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह। और आप देखिए, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम तो तुम्हारी शक्लें बदल देंगे, यानी कि आखिरत में जो अल्लाह ताला हमें जिस्म देगा ना, ये बिल्कुल नए जिस्म होंगे, जहन्नमियों के जिस्म बिल्कुल फ़र्क होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें ये भी हमारे लिए सोच का एक नुक्ता दिया है कि हम तुम्हें एक नई ही तख्लीक दे देंगे। वलकद अलिम तुम नशत अलूला, पहली तो पता है, अगली नहीं तुम्हें पता, नुनशीकुम फ़ी मा ला तालमून। क्योंकि आप देखिए, दुनिया में आपको एक दफ़ा तकलीफ़ हुई ना, थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाती है, शिद्दत होती है ना तकलीफ की तो मौत आती है। आखिरत में नहीं है, जहन्नमियों और जन्नतियों की जो फिजीक है ना, ये बॉडी, ये बिल्कुल फर्क होगी। तकलीफ होगी होगी होगी, लेकिन मौत नहीं आएगी। अजाब है, अजाब है, सांप डस रहे हैं, डस रहे हैं, डस रहे हैं, दुनिया में एक दफा सांप डसे बंदा मर जाता है, वहां नहीं मरेगा। दुनिया में एक दफा आग लगी, हड्डियां जली और खोपड़ी फटी, खत्म, वहां की आग में जलेंगे लेकिन बॉडी इस किस्म की बना दी जाएगी कि वो मरेगी नहीं। अल्लाह कहते हैं तुम्हें तो अभी पता ही नहीं तुम्हारे साथ होना क्या, वनुन शिकु फी मला तालमून, तुम तो आज उसके बारे में जानते ही नहीं हो। और इसी तरह जन्नतियों के जिस्म, आप दुनिया में देखिए थोड़ी सी अब लज्जत लेते हैं ना, फिर आप थक जाते हैं, आपकी फेवरेट चीज़ आपके सामने आ जाए, बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद आप थक जाते हैं। एक आइसक्रीम का कप बड़ा अच्छा लगेगा, दूसरे से और ज़रा सी खुशी, तीसरा बोझ, चौथा सज़ा और पाँचवा कप मौत। खाओ इसको, नहीं खा सकते, जन्नत में ऐसा नहीं होगा। खाएंगे तो खाएंगे तो खाएंगे, वहाँ इश्तहा बढ़ेगी, क्योंकि अल्लाह ताला के नुबद्दिल अमसालकुम, तुम्हारी शक्लो सूरत ही बदल जाएगी। हदीस में आता है कि एक आम मर्द को जन्नत में दुनिया के 100 मर्दों जैसी जिनसी ताकत दे दी जाएगी। दुनिया में हर लज्जत की एक इंतहा है। हर ख्वाहिश एक वक्त पे ख़त्म हो जाती है। आप सोना चाहते हैं, आप कहते हैं अब मैंने 4 दिन सोना है क्योंकि मेरा आखिरी पेपर है। सो के तो देखें, 4 दिन नहीं, आप 10 घंटे सो जाएं, 11वां घंटा आपको मुश्किल होगा, कमर टूटने लगेगी, बिस्तर से आप पलट पलट के बैठेंगे, हम एक खास हद से सो नहीं सकते। आप कहते हैं मुझे बैठना है बैठना है, आप बैठे रहें थोड़ी देर, कहेंगे जिस्म सुन्न हो गया, पाँव अकड़ गए। दुनिया में हमारी हर खूबी और हर खामी लिमिटेड है, लेकिन वनुन्शियकुम फीमा ला तालमून, ये फीमा ला तालमून में एक राज छुपा हुआ है। जन्नतियों की खूबियों का भरना और जहन्नमियों के अजाबों का भरना। फरमाया जहन्नमी की ये कान की लो, ये जो लो जहाँ बुंदा पहनते ना, यहाँ से ये चीज़ कितनी है, इतनी सी है, 6 इंच भी नहीं होती। आप अपने कान से यहाँ तक हाथ करें, ये मेरा हले 7 इंच होगा, इतना टोटल। ये कान की लो से यहाँ तक का फासला उहद पहाड़ जितना होगा। कैन यू इमेजिन, सूरत मारेज है ना गालिबन, सबून अजीरान फसल को 70 हाथ लंबी जंजीरों में जकड़े जाएंगे, जिसकी एक कड़ी, यानी कड़ी जैसे चेन होती है ना, यूं एक कड़ी जो है वो इतनी बड़ी है कि एक पहाड़ पे रखी जाए तो उसके बोझ से वो थक जाए, और इतनी बड़ी बड़ी कड़ियों की 70 हाथ, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक हाथ, सबून अजीरान। लोग कहते हैं इतनी लंबी रस्सियाँ और संगलियों में इतने से बंदे को बांधेंगे कैसे, कहा बंदा इतना बड़ा हो जाएगा। वो रस्सों में खूब जकड़े, पता नहीं कितने जिन और दियो और क्या क्या तसव्वुरात में आते हैं, इतने बड़े बड़े जिस्म हो जाएंगे जहन्नम में, जहर से जिस्म फूल जाएंगे। ये दांत जहन्नमी का जो है ये उहद पहाड़ जितना होगा। आप सोचे वो ड्रैकोला और ड्रैगन और जो जो नाम सोचे सुने में कभी, उससे भी बहुत ऊपर अल्लाह कहते हैं फीमा ला तालमुन। और कितने मजे में बैठे, दुनिया में जरा सी स्वेलिंग हो जाए मुंह सूज जाता है, दांत निकलवा के आए आपकी एक साइड बड़ी हो जाती है, चींटी काट ले आपकी आंख इतनी सूजी हुई होती है सुबह उठ के, आप कहते हैं शक्ल ही नहीं देखी जा रही, वहां जाके क्या होने वाला है। और ये सारा कुछ देखे जहन्नुम की आयतों के बाद है, और वाकई जहन्नुम में ऐसी शक्लें बिगड़ेंगी। एक रिवायत का खुलासा है, बस अब हम कहते हैं ना अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बना दें ताकि हमारी सिफारिश कर दें, अच्छी बात है, लेकिन शर्त है, क्या आपकी भी तो कोई कैपेबिलिटी हो। रिवायत में आता है कि वो माँ या बाप जो खुद नेक नहीं बना, बच्चा नेक बन गया, अल्लाह ताला जन्नत में से उसको बुलवाएंगे और कहेंगे कि सिफारिश कर दे अगर ये अपने माँ या बाप की जिसकी भी, तो वो उसको जहन्नम से निकाल दें। फरिश्ते उसकी माँ को जहन्नम से निकालेंगे और अजाबों ने उसकी शक्ल बदल दी। फरिश्ते उस बच्चे से कहेंगे ये तेरी माँ है, अगर तू इसकी सिफारिश कर दे तो अल्लाह आज इसको जहन्नम से निकाल देगा। तो कहेगा नहीं, ये तो मेरी माँ ही नहीं है, मौका दिया जा रहा है, लेकिन वो पहचान से इनकार कर देगा कि मेरी माँ तो इतनी हसीन थी, वो तो शम्मा महफिल थी, ये तो औरत मेरी माँ ही नहीं है, और उसको अखीर दोबारा जहन्नुम में डाल के बच्चे को जन्नत में ले जाया जाएगा। ये भी होने वाला है, फीमा ला तालमून तो फलाउला तज़क्करून। ये नसीहत की बातें हैं, सोचा करो, गौर किया करो, हर वक्त इस दुनिया के ही गमों में ना हौलते रहा करो, छोटी छोटी बातों पे हौल, तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है, जो जहन्नुम में तबीयतें ख़राब होने वाली हैं उसको सोच लें तो दुनिया की खराबियां भूल जाती हैं। खुश हैं, खुश हैं, बाग है, शादी है, खुशियां भूल जाएं अगर जन्नत की खुशियां सामने आ जाएं। छोटी छोटी बात पे हम दुनिया में अल्लाह की बात को छोड़ देते हैं, इतनी, मैं कहती हूँ नाखून में दर्द शुरू हो जाए हम उसको बीमारी समझ लेते हैं, और एक बच्चे की खुशी जो खुशी ही है लेकिन उसको इतना सर पे सवार कर लेते हैं कि वो हमें कितनी नमाजों से दूर कर दे। हम कहते हैं क्या करें, शादी का मौका है, अब नमाजें भी पढ़ेंगे। मैं सोचती हूँ हम कितने फरेब खुर्दा लोग हैं, धोखे में पड़े हुए लोग हैं, और ये पट्टी आंखों से उतरती है कुरान खोलने से। इस वक्त भी अगर आप कुरान ना खोले होते तो शायद आपका इधर बैठने को दिल नहीं करता। सबसे मुश्किल फैसला जो सुबह उठ के आप करते हैं ना, वो सुबह उठना बिस्तर से, ये उठ गए तो बाकी सारे मरहले आसान। और ज़रा बिस्तर पे अपना हाल तो पूछिए, तो सर में दर्द भी होगा, आंखें भी नहीं खुलेंगी, छुट्टी, मैं बीमार हूँ, और वो छुट्टी और बीमारी कब ख़त्म होगी, जब क्लास का टाइम आधा गुजर जाएगा, आप उठते हैं, फिर आप फ्रेश होते हैं, फिर सारे दिन घोड़े की तरह काम करते हैं। कौन सी मेड्स हैं हमारे घरों में जो हमारे काम कर दें क्योंकि हम बीमार हैं, कौन से मर्द हैं जो कि तुम बैठो खाना मैं बाहर से ले आता हूँ, सारे काम सारा दिन करते। लेकिन वो वक्त सुबह फजर का वक्त देखिए कितना मुश्किल लगता है उठना, सिर्फ वो आधा घंटा आपको लगता है कमर में भी दर्द, सर में भी दर्द, आंखों में भी दर्द, बोझ वो जो ही सनराइज होगा पटक आपकी आंखें खुल जाएंगी। शैतान इतना ज्यादा हमारे लिए इन चीजों को ले आता है। तो खुलासा क्या है, गौर करो, अल्लाह के आगे अपने आप को छोटा समझो, क्योंकि तुम्हें उसकी बहुत ज़रूरत है। और फिर उसके बाद आप देखिए कि एक और चीज़, अफराई तुम मा तहरुसून, क्या तुमने देखा जो खेतियाँ तुम बोते हो, यानी पहले तो इंसान के जिस्म में बीज डालने की बात थी, अब क्या है खेती। कभी तुमने सोचा ये बीज जो तुम बोते हो, हर्ष कहते हैं खेती को, हारिस कहते हैं किसान को, तो तहरुसून किसान का जमीन में बीज डालना, आ अंतुम तजरउना हो, इनसे खेतियां तुम उगाते हो, अम नहनुज़ारिऊन, या इनके उगाने वाले हम हैं। जवाब दो, कभी किसी ने जमींदारी की हो, गार्डनिंग की हो, किसी जगह फसल डालने के लिए कुछ जमीन को नरम किया हो, सच बताइए कि किसान को तो याद भी नहीं होगा कि मैंने बीज डाला कैसे था। मैंने सुना है कैसे मुट्ठी में डाल के यूं छट्टा फेंकते हैं, वो बीज किधर गया, किसने डाला, किधर कुछ बाहर गिरे, कुछ जाया किए, ये अल्लाह को पता किस बीज से पौधा उगना है और किस बीज ने पाँव में आके जाया हो जाना है। ये तो जमीन है अमीन अमानतदार, आप भूल जाते हैं, ये जमीन नहीं भूलती। किसी कोने में भी वो बीज डला था, चंद दिन बाद उसकी भी कोंपल फूटेगी। अगर ये जमीन इतनी अमानतदार ना होती कि एक बीज जो हम उसको देते हैं उसके 70,000 बीजों वाला पौधा बना के ना देती, किसान कभी अपनी 1 साल की मेहनत की कमाई से बीज खरीद के कभी ज़मीन में ना डालता। इस पे भी बहुत बड़ी बात है। मुझे एक लेक्चर याद आ रहा है जिसमें सिर्फ इस पे बातें हुई थी कि ये कायनात कितनी अमीन है, यहाँ पर मैं अपने मुर्दों को क्यों दफन करके आते हैं, क्योंकि ये ज़मीन अमानतदार है, हमें पता है ये ख्यानते नहीं करेगी। अगर आज मैं और आप सिर्फ ज़मीन की तरह अमीन हो जाएं, और अमीन कौन, अमानतों को संभालने वाला, जिम्मेदारियों को पूरा करने वाला, कमिटमेंट्स को निभाने वाला, जान पे खेल जाए, जो कह दिया उसको नहीं छोड़ना। आपने कमिटमेंट की है ना आने की, एज अ स्टूडेंट ज़मीन की तरह बनिए, अमीन बनिए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा अगर आप छुट्टी करेंगे, कोई पुलिस नहीं आएगी आपके घर में, दिखाइए वाकई सच है झूठ, ये काम आप खुद करेंगे, अपने मुहासिब खुद बन जाएं। क्या वाकई नहीं आ सकती, क्या वाकई छुट्टी करनी ज़रूरी है, क्या वाकई अगर कुरान से छुट्टी की है तो हर चीज़ से छुट्टी हो गई है मेरी, और क्या वाकई 15 मिनट का अपॉइंटमेंट था तो पौने 3 घंटे मैंने ऐसे ही ज़ाया कर दिए। आप खुद से पूछेंगे, कोई आपसे नहीं पूछेगा, और जो खुद से पूछ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनसे पूछना नहीं पड़ता, कल वो आगे अल्लाह के हुक्म से ऐसे बढ़ जाते हैं कि वो आगे फिर दूसरों की मदद करने वाले बनते हैं। मैंने अपने पिछले 20 साल कह लीजिए, मैंने जो लोगों से पढ़ते पढ़ाते में सीखा है ना, एक चीज़ सीखी है जो मैं आपको आज याद आ गई है तो कह दूँ, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो अच्छे तालिब इल्म होते हैं ना, वो कल अच्छे अंसारुल्लाह होते हैं। आज लेने में जितने कमिटेड है ना, कल देने में भी इतने ही होंगे। आज आप छुट्टी नहीं करें कल भी नहीं करेंगे, आज आप लेट नहीं आते कल भी लेट नहीं आएंगे, ये हमारी तबीयत का हिस्सा बन जाती है। कुछ लोग तालिब इल्म थे तो 15 मिनट लेट आते थे, और आज वो अंसारुल्लाह में वो 15 ही मिनट लेट आते हैं, इल्ला ये कि कुरान उनको छेड़े और वो खुद को बदले और मुजाहदे करे, तो फ़र्क तो पड़ता है, अखलाकी तौर पे बहुत फ़र्क पड़ता है कुरान पढ़ने के बाद, लेकिन कुछ तबीयत की चीज़ें नहीं बदलती। अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम, जो तुम में से दौरे जाहिलियत में खैर में थे वो इस्लाम पे आके भी खैर वाले ही रहे, और जो उधर ज़रा शरीर टाइप थे वो इस्लाम कबूल करके भी शरीर ही रहे। तो याद रखिए अल्लाह सुबहाना तआला आपको मुझे गौर व फिक्र सिखा रहे इस सूरत में, और मैंने सुना है कि लोग इस सूरत को पढ़ते हैं रिस्क बढ़ाने के लिए, हर दिन मग़रिब के बाद भी पढ़ते हैं, एक दफ़ा ज़रा गौर तो करके पढ़ें इसमें है क्या। पूरी सूरत तो तौहीद सिखा रही है आपको कि तुम तो एक बीज डालकर दोबारा उससे पौधा फल और फसल ले ही नहीं सकते, जब तक अल्लाह ना दे तो तुम उससे उखड़े उखड़े कैसे रह सकते हो। फिर आप देखिए थोड़ा सा गौर व फिक्र करते हैं कि बीज मुर्दा, गन्नों आपके घर के अंदर डब्बे में 10 साल पड़ी रहे, बेजान है, मुर्दा, वही बेजान दाना जमीन के अंदर बोया तो वहां से एक लहलहाता सांस लेता हुआ पौधा। क्या सिखाया कि आज जब एक इंसान मिट्टी में जाता है तो वो मुर्दा होता है, कल कब्र से जब निकलेगा तो वो जिंदा होगा। हदीस में आता है कि मरने वाले की कमर में से एक मोहरा, पीछे का ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, इसमें एक कोई ऐसी जगह होती है मोहरों पे, मोहरे आपको पता ना, इस तरह हमारी बोन ऐसे है, छोटी छोटी जैसे डाइस होती हैं, गोटियां कह लें, ऐसे एक दूसरे पे रखी जाए ना तो ये पूरी होती हैं, इसीलिए एक ज़रा सी हिलती है तो कमर की तकलीफ शुरू हो जाती है। इनमें से एक जो मेन है ना, वो नहीं मिट्टी में घुलती, वो महफूज हो रही है, और पहले सूर के बाद जब अल्लाह चाहेगा ज़मीन पे इतनी बारिश पड़ेगी कि फिर वो बीज की तरह वही कमरों की मोहरों से बंदे उगेंगे। ये होगा, सही रिवायत से बात मिलती है। यही बात अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो मट्टी पे गौर करो, गौर व फिक्र करो, अल्लाह ताला ने ये लहलहाती हुई फसलें जो पैदा की, इसी तरह कल तुम्हारी आंखों के सामने कब्रों में से मुर्दे निकलेंगे, क्या ये बात तुम्हें नामुमकिन लगती है? तो फिर बैठे रहो,